Creo que así, ¿no?
पहले क्या है कि जब से हम कर चुके थे मगर ऐसे हम सबसे नए प्रार्थना करते हैं शास्त्र का प्रथम अध्याय हमने अभी एक घंटे पहले पूर्ण किया। अब यहाँ तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय की चर्चा हमें प्रारंभ करनी है। जीव का स्वरूप क्या है, जीव कैसे होते हैं तथा जीव पांच भावों वाले होते हैं। जीव के पांच भाव हैं। पहले ही सूत्र से प्रारंभ करते हैं जीव के असाधारण भाव। असाधारण भाव जीव के पांच तरह के भाव कौन कौन से पांच भाव हैं? सूत्र सुने अपन। औक्षणिक शायिको भाव, औक्षणिक शायिको भाव, मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिक। जैसे सब शब्द अलग अलग पढ़ता हूँ इसमें बहुत इजीली पढ़ने में आएगा। औक्षणिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिक। पढ़ सकते हैं पूरा। पहला शब्द है इसमें औक्षणिक। औक्षणिक भाव है पहला भाव। औक्षणिक के बाद में है शायिक। शायिक भाव फिर मिश्रस्य माने मिश्र भाव। पहला हो गया औक्षणिक, दूसरा हो गया क्षायिक, अब तीसरे नंबर पर हो गया क्षयोक्षमिक। तीसरे नंबर पर क्षय और उक्षम दोनों है। मिश्र मिश्र का मतलब मिला हुआ। किसका मिला हुआ? कि पहले जो दो शब्द कहे हैं उनका मिला हुआ। पहला शब्द था औक्षमिक, दूसरा था क्षायिक, फिर तीसरा कहा मिश्र। मिश्र को कहते हैं क्षय उक्षम। ये है मिश्र। फिर जीवस्य माने जीव के स्वतत्वम अपने तत्व हैं। तीन नाम हो गए क्या अभी तक? पहला औक्षणिक हो गया, दूसरा क्षायिक हो गया, तीसरा क्षयोक्षम हो गया। मिश्र भी कह सकते हैं शब्द में। अब चौथा नाम आ रहा है औदयिक। मौदयिक है ना, ये मौ माँ में से आधा मैं तो इधर निकले स्वतत्वम। स्वतत्व नहीं तत्वम, आधा मैं निकल गया। अब बच गया औदयिक। मौदयिक नहीं है, लिखा हुआ तो मौदयिक ही है लेकिन शब्द क्या हो जाएगा औदयिक। और पारिणामिक कौके और पारिणामिक। ये पांच नाम है, ये पांच भाव यहाँ कहे हैं। इन पांच भावों का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? देखो धीरे धीरे सुनो, अभी फिर इनके भेद प्रभेद बतलाएंगे। आगे के पांच सात सूत्रों में सिर्फ इनके भेदों की चर्चा की है, अभी सब हो जाएंगे पूरे। औक्षम उपशम माने होता है दबना। उपशम दबना, किसके दबने की बात चल रही? कर्मों के दबने की बात चल रही। कर्म दबे हुए हों, कर्म प्रकट नहीं हो, कर्म अपना फल नहीं दे दें। उपशम माने बेहोश हो जाना, बेहोश पड़े रहना, तो बेहोशी की कर्मों की अवस्था वो है औक्षणिक, ठीक है। फिर कहते हैं इसके बाद में क्षायिक, नष्ट हो जाना, उपशम और क्षय। उपशम से जो भाव हो उसका नाम है औक्षणिक, समझना, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो भाई सब्जेक्ट गंभीर है, शब्द बिल्कुल नए हैं, बहुत से लोगों ने इन शब्दों को कभी सुना नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कोई भी चीज बेफर्स्ट, हर चीज नई होती है। इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट शुरू करूं, मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में अनगिनती विषय ऐसे हैं जो नए नए आपने अपनी लाइफ में सीखे हैं। क्या आपने जब चलना सीखा था तो आपको बहुत कठिन लगता था, मुझे मालूम, चलना सीखा था ना, छह महीने का बालक, सात आठ दस महीने का बालक जो घुटनों के बल चलता है, दौड़ता है, उसको उंगली पकड़ करके खड़ा करके चलाओ, आप सोच सकते हैं उसके मन में क्या चलता होगा। उसके मन में चलता होगा ये मुझे यहाँ से वहां इतनी देर में ले जाएंगे, इतनी देर में तो मैं घुटनों के बल तो फटाफट चला जाऊंगा। क्या उसकी मानसिकता की बात कर रहा हूँ, फटाफट में कितना तेज दौड़ता हूँ मैं और ये मुझे खड़ा करते हैं, चला नहीं, क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं मेरे को कैसे चला रहे हैं। भाई तू समझता नहीं है, जब चलना चालू किया था तो बहुत कठिन लगता था, जब एक एक शब्द बुलवाते थे तो आपको बहुत कठिन लगता था, जब एफ और एप्पल सिखाते थे बहुत कठिन लगता था हमारे से, जिस चीज को हमने पहले कभी नहीं सुना हो, जिस काम को हमने पहले कभी नहीं किया हो, वो काम हमें कठिन लगता है। आपने जब लाइफ में पहली बार आटा लगाया होगा रोटी बनाने के लिए, तो आपने कहा होगा मैं जिंदगी में कभी नहीं बना सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये क्या है, ये नहीं हो सकता है कोई भी काम। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप उस काम को बार बार करते रहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है और कठिन से कठिन काम भी बहुत आसान हो जाते हैं। कंप्यूटर चलाना बहुत कठिन काम है, और ये टच स्क्रीन मोबाइल आज भी जो लोग यूज में नहीं लेते हैं उनसे पूछो, दबाते क्या है, दब क्या जाता है, क्या से क्या चले जाता है, हम नहीं चला सकते हैं। लेकिन आप कितना फास्ट उसमें वर्क करते हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, और कितनी फास्ट ड्राइविंग करते हैं। जब आप पहली बार साइकिल पर बैठे होंगे तो जिसने बिठाया होगा तब आपने सोचा होगा यार व्हील दो है, या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि टिका रहे। लेकिन डे बाय डे सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं, आज आपने औक्षणिक शब्द को पहली बार सुना है, आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब बार बार आप इन शब्दों को सुनेंगे तो आपको भाव ख्याल में आने लग जाएगा औक्षणिक, क्योंकि तो फ्लो में चलेंगे। फिर जब जिस प्रकार चलेंगे आपके प्रवचन सभाओं में, कार्य आयोजनों में, तो देखो उसको औक्षणिक भाव था, औक्षणिक भाव होकर के छूट गया, इसका ये हो गया, तो फिर समझ में आने लगेगा। अभी समझने की कोशिश करो, औक्षणिक शब्द उपशम से बना है। उपशम माने होता है दबना, कर्मों के दबने को उपशम कहते हैं। आज तुम्हारे लिए चल रही है बात बेटा, क्या कर्मों के दबने को उपशम कहते हैं, बाकी तो आता है सबको। और दबने से जो भाव हुए वो क्या हुए, औपशमिक, माने कर्म के दबने से जो भाव हुए या जिन भावों से कर्म दबे वो औपशमिक भाव। अब दूसरा शब्द है क्षायित, क्षय, क्षय से जो भाव हो वो है क्षायित। क्षय मतलब नष्ट होना, कर्मों के नष्ट होने को क्षय होना कहते हैं। सारी प्रक्रिया कर्म से रिलेटेड चल रही है, कर्मों के नष्ट होने को क्षय कहते हैं। और जिस भाव से कर्म नष्ट हुए या कर्मों के नष्ट होने से जो भाव हुए उनको कहते हैं क्षायित। क्षायित भाव है, क्षय पोजीशन है, कर्म की पोजीशन है, कर्म की पोजीशन है उपशम। उपशम कर्म में हुआ, औपशमिक जीव का है। कैसा बात बोल रहा हूं, ध्यान देना, जल्दी बाजी नहीं। उपशम कर्म में हुआ और औपशमिक भाव वो जीव का है। क्षय कर्म का हुआ, क्षय कर्म का हुआ और क्षायित भाव वो जीव का है। समझ में आ रहा है? क्षायित भाव कर्म में नहीं है और क्षय जीव में नहीं है, क्षय सुगल में है और क्षायित भाव जीव का है। अब थर्ड तो बहुत इजी हो गया, जब दो समझ में आ गए तो। मिश्र कुछ का क्षय और कुछ का उपशम, कुछ का नष्ट हो जाना और कुछ का दब जाना, वो कहलाता है क्षय उपशम। क्षय उपशम एक भाव, क्षय उपशम भाव, ये भाव लगा देंगे तो जीव का हो जाएगा। तीन हो गए, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक या औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, तीन हो गए। नंबर चार, औदयिक, औदयिक, औदयिक भाव क्या होता है? उदय से जो भाव हो वो औदयिक, उदय कर्म का, उदय कर्म का, उदय आते कर्म के उदय से होने वाले जो भाव हैं वो सब औदयिक भाव हैं। अब कौन कौन से भाव औदयिक भाव हैं? राग द्वेष काम क्रोध कषाय विकार, ये सब उदय है, कर्म के उदय निमित्त बन रहा है इन सब भावों में, ये सब औदयिक भाव कहलाते हैं। ये चार भाव क्षणिक हैं, ये चार भाव पर्याय रूप हैं, ये चार भाव टेम्परेरी हैं, ये चार भाव अवस्थाओं में होते हैं और पांचवा भाव इन सब से अलग है, स्पेशल है, उसका नाम है पारिणामिक भाव। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अभी ये जो सूत्र है इस सूत्र की व्याख्या बहुत प्रकार से हो सकती है। इन पांच भावों का स्वरूप समझाने के लिए मैंने कुछ छह सात प्रवचन किए अभी यहाँ आने के जस्ट पहले इंडिया में, सब वीडियो प्रवचन सब इसमें अवेलेबल है इस चीज में, तो आपको किस तरह से देखना है वो आप देखना। लेकिन मैं अभी सिर्फ समझिए आप इस एक ही लेक्चर में इस पांच भावों की चर्चा करूंगा, उसमें इनके भेदों की चर्चा भी करूंगा, आगे के सूत्रों की चर्चा भी करूंगा और कुछ विषय को और आगे भी बढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे भाव ये है कि कल तक हम इस चैप्टर को ही खत्म कर लें, ठीक है ना? आपका भाव था ऐसा, यहां से तो खत्म हो जाएगा, धारणा में कुछ रहेगा कि नहीं? धारणा में रहना चाहिए, धारणा में रहने का मतलब तो ख्याल में, धारणा में रहने का मतलब मेमोरी में जिसको रिकॉल किया जा सके वो धारणा, जिस नहीं परमानेंट नहीं कह सकते, जब तक वो रिकॉल किया जा सकता है तब तक धारणा में है। हो सकता है उसी तीन दिन बाद निकल जाए, अभी आपने क्या भोजन किया था वो अभी आपकी धारणा में है, लेकिन कल तक धारणा में नहीं रहेगा, कल तक भी रह सकता है, तीन दिन बाद पूछेंगे तो भूल जाओगे, फिर धारणा में नहीं रहेगा, ऐसा मतलब वो टेम्परेरी धारणा में है। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये पांच भाव हैं। सुनो अब औपशमिक भाव के बिना, ध्यान से सुनना, औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। किसके बिना क्या नहीं होता? इससे पहले कि मैं इनके बारे में बतलाऊं, पारिणामिक और तुम लोग पारिणामिक नहीं बताया ना अभी, मैंने चार तो हुए ना, समझ में आ गए ना? अभी जो पारिणामिक है वो क्या है? जिसमें ये चार नहीं है वो पारिणामिक है। और ये कैसी बात कर रहे हो आप? अब सुनो, कर्म का उपशम क्षय, क्षयोपशम उदय, कर्म का उदय उपशम क्षय, क्षयोपशम, चार भाव थे ना, कर्म का उदय उपशम क्षय, क्षयोपशम, बोले इनके बिना जो भाव हो वो है पारिणामिक। इसका मतलब पारिणामिक भाव वो है जो कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं रखता, जो कर्म के क्षय की अपेक्षा नहीं रखता, कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखता, कर्म के उपशम की अपेक्षा नहीं रखता। माने वो पारिणामिक भाव वो है, वो कर्म से निरपेक्ष है। कर्मों में कुछ भी हो रहा हो वो पारिणामिक भाव मतलब एजिटेड रहता है, जो एजिटेड रहे उसका नाम है पारिणामिक भाव। ये चार एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, कल कहा था ना मैंने, ये देखो आप क्या हुआ, ये चार एक तरफ है और ये अकेला एक तरफ है। ये अकेला एक तरफ कौन सा है, पारिणामिक। सारा खेल पारिणामिक का है भाई साहब। पारिणामिक भाव क्या चीज है, अनचेंजेबल। सुबह छठी गाथा में जिसकी चर्चा चल रही है, ज्ञायक भाव पारिणामिक है। जो कभी नहीं बदलता वो पारिणामिक है, जो अनादि अनंत है वो पारिणामिक है। कर्मों का कितना भी उदय आदि आए तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका नाम पारिणामिक है। क्या क्या बात है भाई साहब, ये पारिणामिक भाव कैसा भाव है, कर्म से फर्क नहीं पड़ता। कितने कर्मों का उदय आए कि ये जीव बदल जाए, जीव कभी पुद्गल हो जाए, जीव कभी जड़ हो जाए, जीव का कभी विनाश हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। वो पारिणामिक भाव है, अनचेंजेबल भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। ये द्रव्य स्वरूप है, जैसे 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 आप बतला सकते हो क्या पारिणामिक भाव, किसी भी वस्तु के किसी पारिणामिक भाव को बतला कुछ बात। शक्कर का मिठास, ये उसका पारिणामिक भाव है। मूल स्वभाव, जैसे अग्नि फायर, अग्नि की उष्णता उसका गर्मपना, ये उसका पारिणामिक भाव है, कभी नहीं मिट सकती। अग्नि में से गर्मपना मिटा के दिखाओ कभी, अग्नि है फायर है, उसमें से हमने कहा कि इसमें से गर्मी निकल गई भाई, इम्पॉसिबल। अग्नि में से गर्माहट कभी नहीं निकल सकती। ऐसे ही आत्मा में से ज्ञान पना, ज्ञायक पना और कभी नहीं निकल सकता है, ज्ञान पना के पारिणामिक। अब कितना ज्ञान, वो फिर औदयिक हो जाएगा, चयोक्षविक हो जाएगा, क्षायिक हो जाएगा, कौन सा जैसे भेद प्रभेद डाल दिए ना, ये आप उसके अंदर फ्लक्चुएशन देखेंगे तो फिर ये चार दिखेंगे। और आप उसमें सिर्फ ज्ञानपना देखेंगे तो पारिणामिक हो जाएगा, समझ रहे हैं। ज्ञान का देखो, अभी अभी बतलाता हूं, पांच ज्ञान पढ़े हैं अभी आपने, कब पढ़े, अभी पढ़े एक घंटे पहले, आधा घंटे पहले आपने पता नहीं कहाँ पढ़े, कोई बात नहीं। पांच प्रकार के ज्ञान पढ़े, कौन कौन से ज्ञान है भैया, मति श्रुत अवधि मन करिए केवल ज्ञान, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, मति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन करिए ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे लिख सकते हैं अपन, पांचों को लिख दिया। अब सुनो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिये ज्ञान, ये चार ज्ञान तो है क्षयोक्षमिक ज्ञान। क्षयोक्षम है इसमें, कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञान है। इसको क्षयोक्षम क्यों कहा, कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञान है, इसलिए इन चार ज्ञानों को क्या कहा, क्षयोक्षमिक ज्ञान। और केवल ज्ञान है वो क्षयिक ज्ञान है, उसमें ज्ञानावरणी कर्म बिल्कुल नहीं है, कर्म के क्षय से हुआ है, वो क्षायिक ज्ञान है। केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहते हैं, वो क्षायिक भाव है, क्योंकि वो कर्म के क्षय से हुआ है। कौन से कर्म के क्षय से, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से हुआ है, इसलिए वो क्षायिक ज्ञान। अब मेरे को इम्पोर्टेंट बात ये कहनी है, इन पांचों ज्ञानों में से ये लेफ्ट साइड वाला था उसको दबा दो और इधर पढ़ो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान, केवल ज्ञान, अब इन सबको छिपा दिया, एक साइड में कागज लगा दिया। अब पढ़ो, बोले ज्ञान 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 ज्ञान, तो बोले जो ज्ञान 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 है ना, ये पारिणामिक भाव है। मति ज्ञान, मति ज्ञान में ज्ञान का लेवल बतला रहे हैं कि कुछ कम ज्यादा है, जो भी है उसकी अलग सिचुएशन बतला रहे हैं। श्रुत ज्ञान, ज्ञान की एक अलग पोजीशन बतला रहे हैं। अवधि ज्ञान कुछ अलग पोजीशन बतला रहे हैं। मने पर ये ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान के अलग अलग स्टेज हैं। लेकिन हमने कहा स्टेज मत देखो, सिर्फ ज्ञान को देखो तो पारायण को, ज्ञान का ज्ञान पना वो पारिणामिक है, वस्तु का स्वभाव पारिणामिक है, वस्तु का स्वभाव कभी नहीं बदलता है, उसे पारिणामिक कहते हैं। अब इन पांच भावों के को हटा के देखो तो किसके बिना क्या नहीं होता, जैसे औपशमिक भाव, तो कहा शास्त्रों के कथन है वचन है, औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, धर्म की शुरुआत नहीं होती। सबसे पहले किसी जीव को यदि मोक्ष मार्ग में कोई भाव होता होगा तो औपशमिक भाव होता है, जैसे हम कहते हैं औपशमिक सम्यक दर्शन। फर्स्ट स्टेप है, किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो सबसे पहले जो भाव होगा उसका नाम औपशमिक भाव। सबसे पहले औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है, क्षायिक भाव के बिना मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, क्षायिक भाव के बिना मोक्ष नहीं होता। मोक्ष में जितने जीव हैं सब क्षायिक भाव वाले, कर्म के क्षय वाले। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है, क्षायिक भाव के बिना मोक्ष नहीं है, क्षयोक्षमिक भाव के बिना कोई क्षणभक्त नहीं है, क्षयोक्षमिक भाव के बिना कोई क्षणभक्त नहीं है। जितने क्षणभक्त मतलब आवरण वाले जीव, क्षणभक्त मतलब संसारी, क्षणभक्त तुम्हारे सारे दुनिया के जितने जीव भगवान बनने के पहले तक सब क्षणभक्त होते हैं, तो क्षयोक्षम है क्षणभक्त दशा में, क्षयोक्षम भाव के बिना कोई क्षणभक्त नहीं है, और औदयिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, और पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। पांच बातें कह दी मैंने, पांचों में एक ही लैंग्वेज प्रयोग की है। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है, क्षायिक भाव के बिना मोक्ष नहीं है, क्षयोक्षम भाव के बिना क्षणभक्त नहीं है, औदयिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, और पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं, जीव नहीं है। क्लियर हो गई है सबको बात? तो बताओ पारिणामिक भाव के बिना, क्षयोक्षमिक भाव के बिना, औदयिक भाव के बिना कोई, औदयिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, और क्षायिक भाव के बिना मोक्ष नहीं है, और औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं। क्लियर हुई बात? कठिन तो नहीं है? ये जो सूत्र है, इस सूत्र के बारे में बहुत चर्चाएं हुई शास्त्रों में। बोली मिश्र लिखा है, ये लिखा है, इसकी जगह क्षयोक्षमिक दे देना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, शब्द ऐसे क्यों हुए, एक तो कुछ पहले दे देते भाव बीच में देने की क्या जरूरत थी, लास्ट में एक बार दे देते, ऐसी बहुत चर्चाएं हुई। तो इसका जवाब दिया कि ये जो सूत्र में शब्द दिए हैं, पांच भावों का जो क्रम है, ये क्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। बोले क्यों? औपशमिक भाव वालों की संख्या सबसे कम है दुनिया में, धर्म की शुरू औपशमिक भाव वाले, क्योंकि फिर क्षयोक्षम में बदल जाता है, क्षायिक में बदल जाता है, अंतर्मुख के लिए तो रहता है औपशमिक भाव। सबसे कम संख्या यदि दुनिया में किन्हीं जीवों की है पांच भावों में से, तो औपशमिक भाव वालों की। इससे ज्यादा संख्या क्षायिक भाव वालों की है, औपशमिक से ज्यादा संख्या। क्यों? क्योंकि जितने भी सिद्ध परमात्मा है, मुक्त जीव है, सब क्षायिक भाव वाले हैं, उससे ज्यादा है। फिर का क्षयोक्षम भाव वालों की संख्या उससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय से या पहले गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक के सारे जीव आ जाएंगे, निगोदिया भी आ जाएंगे इसमें, तो ये कौन से हो गए? क्षयोक्षम वाले, इनकी संख्या और ज्यादा हो गई। औदयिक वालों की संख्या और ज्यादा है, क्योंकि इसमें चौदहवें गुणस्थान तक के जीव आ जाते हैं, पहले से चौदहवें तक, सब औदयिक भाव वाले हैं। और पारिणामिक भाव वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें संसारी और मुक्त सब आ गए, कोई नहीं छूटा। क्या बेटा क्या पूछना है? सबसे कम संख्या किनकी है? ऑप्शन एक। सबसे ज्यादा संख्या पारिणामिक भाव वालों की। इन पांच भावों के बारे में मोटी मोटी बात समझ में आई क्या? मोटा मोटा समझ में आ गया क्या? बस मोटा मोटा ही समझाना है। चलो आगे चलो। तो अब इन पांचों के भेद प्रभेद बतला रहे हैं, बहुत सरल है। क्या है देखो आगे वाला सूत्र। अब इस सूत्र को देखना और इस सूत्र के माध्यम से जो रहस्य निकलेंगे आगे वाले सूत्रों को जोड़ते हुए, क्या गजब करते हैं भाई ये आचार्यों का तो कमाल है। द्वि नमाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्वि नव अष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। आप तो बोल सकते हैं सब तो तोड़ते हुए। द्वि नव अष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। देखो द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो। सब नाइन से इसके ऊपर लिखते जाइए, जिनके खुद के पर्सनल पेपर है उसके ऊपर भी लिखते जाए। द्वि मतलब दो, नव मतलब नौ, नाइन, अष्टादश अने एटीन, अष्टादश एटीन, अष्टादश अष्टदश एटीन हो गया, अष्ट माने आठ होता है, दश मतलब दश, एटीन। एक विंशति इक्कीस, एक विंशति, विंशति मतलब बीस, एक विंशति माने इक्कीस, ट्वेंटी वन। फिर त्री, त्री मतलब तीन, वेदा वेद बोले यथाक्रमम, उसी क्रम से लगा लेना। अब लगाओ किसने किसकी बुद्धि है, अब आप बुद्धि चलाओ। यहाँ दो किसके होंगे, पहला कौन सा था, दो किसके हुए, ऑप्शन एक के। फिर नौ, नौ किसके होंगे, चाइल्ड के होंगे नौ। फिर इसके बाद अष्टादश एटीन, मिश्र, मिश्र के एटीन, क्षयोक्षम के एटीन। फिर एक विंशति माने ट्वेंटी वन, औदयिक के ट्वेंटी वन। फिर त्री पारिणामिक, कितना शॉर्ट कर दिया। भेदा मतलब भेद, ये सब भेद हैं। यथा क्रमम जिस क्रम से पांच नाम बतलाए थे उसी क्रम से ये भेद समझ लेना। क्लियर हो गया? जिस क्रम से पांच नाम बतलाए थे उसी क्रम से मेरे को यहाँ भेद समझ लेना चाहिए। तो साहब ये तो संख्याएं होगी, अभी फटाफट यदि याद हो गए हो तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो संख्या बतलाई है, बोले दो कौन से हैं, दो कौन से हैं ये बताओ। ऑप्शन में, ऑप्शन में के दो भेद हैं, ऑप्शन में के दो भेद हैं, लेकिन दो कौन कौन से, सम्यक विचारित्रे, सम्यक विचारित्र, दो भेद हो गए, एक हो गया सम्यक्त्व, एक हो गया चारित्र। औक्षमिक भाव के दो भेद हैं, सम्यक्त्व और चारित्र, सम्यक्त्व और चारित्र। यहाँ क्या लगाना, औक्षमिक सम्यक्त्व और औक्षमिक चारित्र। सम्यक्त्व भी औक्षमिक, चारित्र भी औक्षमिक, औक्षमिक सम्यक्त्व और औक्षमिक चारित्र, ये औक्षमिक भाव के दो भेद हुए। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। चायिक भाव के नौ भेद, कितने चायिक भाव के, नौ है, सात है, सात है भाई, नौ है, नौ कैसे मालूम आपको, नौ बोल दिया था क्या मैंने पहले, सात है, नौ है मेरे कहने से मान रहे हैं। अच्छा सूत्र में लिखा था नौ, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है नौ लिखा है। अब गिनो देखो कितने, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, दान लाभ, भोग भोग, वीर्याणि च, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणी के जिन्हों पहला ज्ञान फिर दर्शन फिर दान दान पे नंबर तीन फिर लाभ पे चार भोग पांच उपभोग छह वीर वीर्याणी कितने हो गए सात आप कितने बता रहे थे सुनो सुनो ये जो छह लिखा है ना आगे दो पहले के क्यों दो पहले के क्यों हाँ ये जो छह लिखा है ना ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि देखो भाई हम शॉर्ट में बात करेंगे जो नाम पहले बता दिए उनको दोबारा नहीं बताएंगे अरे क्या बात कर रहे हो तो हम कैसे मानेंगे ऑप्शन के भेद से शाइक में कैसे आ जाएंगे तो कहा सुनो औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र आप सम्यक्त्व और चारित्र के साथ में औपशमिक हटा दो और शाइक लगा दो तो शाइक सम्यक्त्व और शाइक चारित्र क्या क्या कहा मेरे बाप देखो थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके सुनना सम्यक दर्शन औपशमिक सम्यक दर्शन भी होता है और एक शाइक सम्यक दर्शन भी होता है औपशमिक सम्यक दर्शन औपशमिक भाव का वेद है और शाइक सम्यक दर्शन शाइक भाव का वेद है ये सिद्धांत ग्रंथ है ये तत्वार सूत्र इसमें मैं यदि डिटेलिंग करूं इसको अभी तो मैं खूब हंसते हंसाते क्लास चल सकती है आप कहोगे बस मजा आ गया लेकिन फिर वो मजा ऐसा ही आएगा कि बस सब पाठ आगे पाठ और पीछे सपाट क्या इसलिए ऐसा नहीं आप इस विषय को समझो थोड़ी विषय की गंभीरता को समझो है ना तो हमने संडे को खूब हंसाया था आपको तो अभी हंसने का प्रसंग नहीं है अभी समझने का सवाल है क्योंकि अभी नहीं समझोगे तो फिर साल भर बाद चांस मिलेगा कब समझाएंगे फिर इन विषय को औपशमिक भाव के कितने थे दो शायद भाव के नौ सूत्र में गिनाए शब्द सात तो दो लगा लिए अपन ने पहले वाले क्यों लगा लिए ये सूत्र में क्या दिया है ठीक है तो अब इनके शब्दों के अर्थ तो आ रहे होंगे समझ में ज्ञान मतलब तो ज्ञान है शायद ज्ञान अब सबके साथ में शायद लगाओ शायद ज्ञान शायद दर्शन शायद दान शायद लाभ शायद भोग शायद उपभोग और शायद वीर एक शायद भाव के भेद बन गए भोग और उपभोग में क्या अंतर है हाँ बहुत अच्छा वन टाइम यूज जो भी चीज होगी वो भोग और रीयूज जैसे किया जाए वो उपभोग अभी आपने जो रस पिया था क्या आम का क्या क्या था आपने तो पाव भाजी खाई थी तो वो उसका भोग किया कि उपभोग उपभोग नहीं भोग ही किया है दोबारा धोड़ी में खाऊंगे उसको निकाल के जो यूज एंड यूज किया और खत्म हो गया रह गया सब भोग ऐसी चीजें जिन चीजों को यूज में किया और खत्म हो गया आपने जो खा लिया जो पाव आपने खाया जो रोटी आपने खाई वो खाने के बाद में खा सकते हो उस रोटी को खत्म हो गया तो वो कहलाता है भोग लेकिन जिस ड्रेस को आपने आज पहना है इसको दोबारा पहन सकते हो क्या नहीं ये कहलाएगा उपभोग कपड़ों का उपभोग करते हैं बर्तन का उपभोग करते हैं घर गाड़ी का उपभोग करते हैं और भोजन आदि ऐसी सामग्रियों का भोग होता है ठीक है भोग और उपभोग ये सब क्षायुक हैं, क्षायुक भाव के भेदों में शामिल किया आगे बढ़ो क्षायोक्षमिक के कितने भेद हैं क्षायोक्षमिक भाव के 18 भेद 18 कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा सूत्र आपको बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा ये वाला भी और इसके आगे वाला भी क्योंकि इन इन दोनों सूत्रों के अंदर बड़ा चक्कर है और ये चेयर तो है ही, और भी कई चक्कर है, चेयर से चक्कर भी होता है। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान ज्ञान बोलो, दर्शन लब्धयश चतुर त्रि त्रि पंच भेद सम्यक्व चारित्र संयमा संयमाश्च। क्या क्या हुए है जैसे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। पहला है ज्ञान, फर्स्ट नंबर पर वर्ड क्या है, ज्ञान। फिर उसके बाद में दिया अज्ञान, ज्ञान अज्ञान। 18 नहीं गिना रहे हैं आप, लिख रहे होंगे 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 4 नहीं है ना। पहला है ज्ञान, फिर लिखा अज्ञान, फिर लिखा दर्शन, दर्शन के बाद में लिखा लब्धि। कितने हुए, ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि। अब कह रहे हैं चतुर, तो ये चतुर तो लगेगा पहले ज्ञान के साथ में, अभी तक चार शब्द बतला दिए, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि, चार शब्द, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि। अब चार संख्या कह रहे हैं चतुर त्रि त्रि और पंच, जिस क्रम से चार शब्द कहे थे उस क्रम से ये संख्याएं लगा लो। क्या कहते सूत्र है भाई, सूत्र उसे कहते हैं कम से कम अक्षर, एक अक्षर भी यदि कम हो जाए बहुत बड़ी बात है, एक अक्षर भी कैसे कम हो सकता है, कैसे कम हो सकता है कम कर। बहुत गजब ज्ञान, देखो अभी अभी सबने लगा भी दिया, जरूरत ही नहीं है मेरी, मैं तो कह रहा था उनसे कि सब पढ़ लेंगे। देखो ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि, फिर ये चार शब्द हुए, अब इन चारों के साथ में लगाना, चतुर मतलब होता है चार, तो चार क्या हुए, ज्ञान। फिर है त्रि, त्रि मतलब तीन, तीन अज्ञान, तो चार ज्ञान कौन से लिए, क्षयोक्षम भाव के भेद कर रहे हैं, केवल ज्ञान को छोड़कर अवधि और मने पर, क्षयोक्षम थे ना, ये क्षयोक्षम ज्ञान है, और तीन अज्ञान कौन से, ऐसा कह दो कुमति कुश्रुत और कु अवधि, सबके आगे कु लगा दो, कुमति कुश्रुत कु अवधि या मति श्रुत और अवधि, ये विपर्ययाश्च सूत्र पढ़ा था अपन ने, मति श्रुतावधयो विपर्ययाश्च, ये उल्टे भी हो जाते हैं ये ज्ञान। चलो कोई बात नहीं, चतुर मतलब चार ज्ञान हो गए, त्रि मतलब तीन अज्ञान हो गए, फिर दोबारा त्रि दिया माने दर्शन तीन, दर्शन तीन कौन कौन से, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन, दर्शन चार होते हैं, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, तो इसमें चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है ना, ये तीन दर्शन है इसके भेदों में, क्षयोक्षम भाव के भेदों में। और फिर कहा पंच, तो पांच लब्धियां, पांच लब्धियां कौन कौन सी, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये पांच लब्धि, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये पांच लब्धियां, इनको पांच लब्धि भी कहते हैं। हाँ शाइक में आ गई थी ना दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, और क्षयोक्षम में भी आ गई, तो बोले क्षय से हो तो जैसे क्षायिक दान और क्षयोक्षमिक दान, क्षायिक लाभ क्षयोक्षमिक लाभ, क्षायिक भोग क्षयोक्षमिक भोग, क्षायिक उपभोग क्षयोक्षमिक उपभोग, क्षायिक वीर्य क्षयोक्षमिक वीर्य, नहीं समझ में, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, इन पांचों के साथ में क्षायिक लगा दो तो क्षायिक के भेद, इन पांचों के साथ में क्षयोक्षम लगा दो तो क्षयोक्षम इसके भेद, क्षयोक्षम क्यों बनता है इसमें, इनमें क्षयोक्षम इसलिए बनता है क्योंकि तारतम्यता होती है, क्रॉस माइनस होता है, मतलब किसी को कम किसी को ज्यादा, जहाँ कम ज्यादा पने की व्यवस्था हो ना वहां अपने आप क्षय क्षय हो जाता है। जहां भी कम ज्यादा पना हो इसका मतलब एक क्षयोक्षम है, अलग अलग है। कोई 2 लाख का दान देता है, कोई 5 लाख का देता है, कोई 100 डॉलर का देता है, कोई 500 डॉलर का देता है, कोई 5000 डॉलर का देता है, कोई 50 डॉलर का देता है। इस दान में क्षयोक्षम है, कम ज्यादा पन है, तो क्षयोक्षम ही कहता। ऐसे लाभ किसी को कम होता है किसी को ज्यादा होता है, भोग भी उपभोग भी पीढ़ी भी शक्ति भी, इसलिए क्षयोक्षम के भेदों में चले जाते हैं, शक्ति के आधार पर है ये। चलो कोई बात नहीं, कितने हो गए? 18 गिनने थे अपने को। मनोज भाई कितने कर लिए? बहुत हो गए? कितने हो गए? 15 हो गए क्या? 15 कैसे हो गए? 4 ज्ञान 3 अज्ञान 7 3 दर्शन 10 5 लब्धि 15 15 हो गए। अब कह रहे सम्यक्त्व 16 नंबर सूत्री पढ़ रहे हैं अभी। सम्यक्त्व 16, चारित्र 17 और संयमा संयम ये 18। संयमा संयमाश्च, तो संयमा संयम और संयमा संयम माने सम्यक्त्व, क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व, क्षयोक्षमिक चारित्र और संयमा संयम, तो क्षयोक्षम ही। संयमा संयम क्या होता है? पंचम गुण स्थान होता है संयमा संयम, कुछ संयम है और कुछ असंयम भी है, क्षयोक्षम हो गया। कुछ संयम होना और कुछ संयम नहीं होना उसको कहते हैं क्षयोक्षमिक। चलो इतने क्लियर हो गए क्या यहाँ तक? 18 हो गए। चलो आगे चलो, आगे औदयिक भाव के भेद कितने हैं? औदयिक भाव के 21 भेद, 21 याद करने पड़ेंगे।
नहीं नहीं,
ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आप? ऐसा मत करना गड़बड़, हाँ गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल नकल नहीं चलेगी यहाँ, बिल्कुल नकल नहीं। तो क्यों अभी तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो सब मोक्ष मार्ग से रिलेटेड थे, क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व क्षयोक्षमिक चारित्र वो सब सब। अभी ये तो कह रहे कर्म के उठे थे तो संसारी उनके लक्षण है। गति कषाय लिंग, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान, अलग अलग पढ़ो, मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध लेश्या चतुः चतुः त्रय एक 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 षड भेदः। अब तो लगा लेंगे यार सिर्फ, ये तो सिंपल है। गति देखो, पहले शब्द गिनो कौन कौन से। पहला है गति, फिर है कषाय, फिर है लिंग, फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन पूरा एक शब्द है, फिर अज्ञान, फिर असंयम, फिर असिद्धत्व, फिर लेश्या। अब इन सब के आगे नंबरिंग डालना है, इन सब के ऊपर क्या क्या नंबर डालेंगे। तो पहला लिखा चतुः, चार। चार क्या चीज है डॉक्टर साहब? मैं सूत्र लेकर के पूछ लूंगा, ये सूत्र है आपके सामने, आप बताओ इस सूत्र में क्या लिखा है। चतुः मतलब चार, चार क्या है? अशाय नहीं, चार गति। सबसे पहले चार गति, चार गतियां कौन कौन सी होती है? मनुष्य त्रियंत देव नार की गतियां चार, फिर लिखा दोबारा चार लिख दिया इन्होंने, चतुः के बाद फिर चतुः, फिर चार माने कषाय भी चार, क्रोध मान माया रूप, ये सब औदयिक है। कर्म के उदय से गतियां हैं, कर्म के उदय से कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ ये कषाय कर्म के उदय से है। सुनो, लेकिन कर्म का उदय कषाय कराता नहीं है, ये समझ लेना। कर्म के उदय से कषाय होती हो ऐसा नहीं है, जब कषाय होती है तो कर्म का उदय होता है। चार गति चार कषाय, फिर लिखा त्रय, तीन, तीन लिंग कौन कौन से, विश्व पुरुष नपुंसक, फिर एक 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 चार लिख दिए, चार बार एक 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 एक, मिथ्या दर्शन एक है, अज्ञान एक है, असंयम एक है, असिद्धत्व ये भी एक है, फिर कहा षड भेदाह, छह छह भेद कितने हैं, निश्चय, निश्चय जानते हैं आप क्या होता है, लेशिया, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, छह लेशियाएं होती है। चंद्रकांत भाई आपके लिए बताता हूं, आपने कभी कभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया हो तो किसी किसी तीर्थ क्षेत्र पर बहुत जगहों पर मिलेंगे, कभी गौर करना, कभी दर्शन करने कभी जाओ तो, जैन मंदिरों में भी मिल सकते हैं कहीं, अपने यहाँ नहीं है। एक ऐसा ट्री देखा होगा आपने, पेड़ बना हुआ, एक चित्र मार्बल पे होता है, कहीं पेंटिंग से बना हुआ होता है, जिसमें पेड़ होता है और उस पेड़ के ऊपर उस पेड़ से जुड़े हुए छह लोग दिखाते हैं, छह व्यक्ति, अभी ध्यान देना ऐसा, माने ये लेशिया क्या है, जीव के भाव हैं, परिणामों को नापने का मेजरमेंट है लेशिया, परिणामों को नापने का मेजरमेंट, बहुत तीव्र परिणाम, बोले कृष्ण, थोड़ा लाइट हुआ तो नील, कलर से भी देख सकते हो, कृष्ण माने ब्लैक, नील मतलब नीला, ब्लू, कृष्ण नील, कापोत ग्रे, ग्रे ग्रे कलर, कबूतर जैसा, कृष्ण नील कापोत, पीत पीला, येलो, पद्म पिंक, शुक्ल सफेद, तो कालेपन से जो डार्कनेस जो थी वो स्टेप बाय स्टेप उसकी डार्कनेस कम होती चली गई है। इसके लिए शास्त्रों में जो उदाहरण दिया है और जो चित्रांकन जगह जगह दिखता है, कभी देखना आप, ऐसा उदाहरण कहा जाता है, छह मित्र थे, स्टोरी सुना रहा हूं, छह दोस्त थे, छहों दोस्त एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, फॉरेस्ट से होकर के गुजरते, रास्ते में जाते जाते भूख लगी, भूख लगी तो एक ने देखा, ओ कैरी, आप लोगों की भाषा में हम कहते हैं आम, आम का पेड़ है ना, हम लोग जब कच्ची होती है ना ग्रीन, उसको कहते हैं कैरी, और जब पक जाती है तो उसको कहते हैं आम, मैंगो, ठीक है, आप दोनों के लिए कैरी शब्द का प्रयोग करते हैं, अच्छा कच्ची और पक्की कहते हैं आप लोग, मैं पहले पहले गया ना तो मेरे से पूछा, बहुत सालों पुरानी बात है, 95 में मैंने पहला दत्तलक्षण किया था अहमदाबाद नवरंगपुरा में, नवरंगपुरा में नहीं, नवा माधोपुरा में अहमदाबाद में 95 में, तो वहां दत्तलक्षण के आसपास का समय था, तो बोले पंडित जी कैरी खाओगे, कैरी 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 लाए, नाश्ते का समय दोपहर में, बोले आप कैरी खाओगे, कैरी खिलाए, कैरी तो वो होती है जो बहुत खट्टी होती है जिसका अचार बनता है, लेकिन वो कैरी का मतलब था मैंगो, तो वहां से समझ में आया मेरे को, चलो कोई बात नहीं, तो वो कैरी का पेड़ समझ लो जी, कैरी का पेड़ दिखा उनको, आम का पेड़ दिखा, तो फटाफट बोले तो साधन व्यवस्था हुई अपने लिए, तो एक ने कहा ठहरो ठहरो, अभी मैं पेड़ कुल्हाड़ी लेकर के और पेड़ को अभी तोड़ देता हूं, तो पेड़ नीचे गिरेगा फिर भरपेट पाएंगे, फिर कैसा व्यक्ति है ये, पेड़ काट रहा है, शहरों में दूसरे गांव जाना है, पेड़ साथ में नहीं ले जाएगा, क्या करेंगे, अभी अभी खाने के लिए चाहिए, लेकिन वो कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ काटने की सोचता है, आप देखना उस पेड़ में, उस क्षेत्र में एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लेकर के और पेड़ के नीचे बॉटम में वहां काटने का प्रयास करता है, दूसरा ऊपर चढ़ा हुआ व्यक्ति दिखेगा, बहुत बड़ा विशाल उसका एक निकला हुआ शाख, उसको काटने का प्रयास करता है, वो वहां कुल्हाड़ी लेकर के चला रहा है, एक तीसरा व्यक्ति वो एक छोटी पतली सी जो शाख निकल रही है, उन्हें इसमें बहुत ज्यादा आम लग रहे हैं आगे, वो उसको काटने की सोचता है। तीन हो गई, ये तीनों तो हैं अशुद्ध। क्यों? क्योंकि तीनों की दृष्टि आम पर नहीं है, पेड़ पर है। एक इतने बड़े पेड़ को काट रहा है, एक इतनी बड़ी शाख को, एक दूसरी पतली शाख को काट रहा है। कृष्ण, नील और कापूर, इनको कहते हैं अशुभ लेशिया, अशुभ परिणाम। चौथा है वो क्या है, वो कहता है ये आम का झुंड दिख रहा है ना, ये झुंड को तोड़ दो, यहाँ पे आम का झुंड तोड़ दो, अब उसमें कच्चे पक्के सब विवेक के बिना जो आ जाए सब तोड़ लेंगे, सारे इनमें से खा लेंगे। ये चौथे नंबर वाला हो गया, इसका नाम है पीत। इसने पेड़ नहीं तोड़ने की बात करी, इसने आम का झुंड तोड़ने की बात कही। पांचवे नंबर वाला पद्म लेशिया वाला, जिसके परिणाम और मंद हुए, वो कहता है यार सब क्यों तोड़ते हो, पक्के पक्के खाने हैं, बस पक्के पक्के तोड़ लो ना। उसके परिणाम कितने मंद हो गए, वो कहता है पक्के पक्के आम तोड़ लो। छठा वाला ये कहता है यार अपन छह लोग हैं, कितने आम नीचे टूट करके पड़े हुए हैं, यहीं से उठा के खा लो। वो शुक्ल लेशिया वाला। तो ये परिणामों के आधार पर, ये परिणामों के भावों की नाप, ये जो एग्जाम्पल दिया ना, जिसके बारे में महेंद्र भाई ने भी कही और मैंने पिछले सेशन में बात की थी, भाई साहब आपको पता नहीं है आपके इन भावों का क्या पल लगता है। एक समय का भाव आपका आपके अनेक भाव बिगाड़ सकता है, एक समय का भाव। बी अलर्ट, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। किसी के लिए भाव मत बिगाड़ो। कल एक वाक्य बोला था, किसी को याद हो तो बताओ, किसी की धारणा में उसको, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो इसलिए दूसरे के लिए भाव बिगाड़कर अपना भाव मत बिगाड़ो। हम क्यों किसी के लिए भाव बिगाड़े भाई साहब, कितनी सी भूल। मैं पूछता हूँ, ऋषभ देव स्वामी की गलती क्या थी बताओ? अनजाने में हुआ ना, अनजाने में हुए पाप का भी ऐसा फल लगता है? तो जान बूझ करके कोई व्यक्ति पाप करे उसका तो कहना ही क्या, भूल करके भी, स्वप्न से भी। इसलिए जो आलोचना पाठ जो हम पढ़ते हैं, आलोचना पाठ वगैरह जो हम बोलते हैं, उन सारे पाठों में हमारे द्वारा ज्ञात अज्ञात अवस्था में की गई भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं हम। वह प्रायश्चित, वह आलोचना पाठ। हमारे दिगंबर परंपरा में तो आलोचना पाठ बहुत फेमस है, श्वेतांबर परंपरा के अंदर प्रतिक्रमण की परंपरा है। परंपरा की बात कहता हूँ, दोनों में दोनों चलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्वेतांबर परंपरा में प्रतिक्रमण बहुत होते हैं। प्रतिक्रमण 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 की बहुत महिमा है। और दिगंबर परंपरा में पुराने लोगों में आलोचना पाठ, आलोचना पाठ भाव लगभग एक जैसा ही है, उसी तरह का है, पूरा पाठ है आलोचना के नाम से। और उस पूरे पाठ में यही गीत गाए, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, हमारे द्वारा ये अपराध हो गया था, हमारे द्वारा ये गलती हो गई थी, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। वो वही सब आलोचना पाठ पढ़ा आपने कभी? कौन सा है? हाँ जो भी हो, चलो मेरी भावना अलग है, आलोचना पाठ अलग है, उसी तरह का पाठ है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो समय बहुत सीमित है अपने पास में, शॉर्ट टाइम है। हाँ ये 5 मिनट है, मैं भी 5 भाव बतला रहा हूँ। देखो अब फर्क है, उन्होंने मेरे को 5 दिखाए, मैं भी इधर से सबको 5 दिखा रहा हूँ। क्या अब 5 क्या है भाव, और मिनट कितने हैं? 5। बात कर रहे थे अपन लेशिया की, लेशिया कितनी है? 6। तो आपने कौन सी लेशिया होनी चाहिए? शुक्ल होनी चाहिए। है कौन सी बताना मत, क्यों बताओ, हालत कैसी है अपनी, अपने मन में कैसे भाव चलते हैं, क्या बताएं आपको। मन के भाव तो ऐसे हैं कि सब कैशनेस कर दे रहे हम, ऐसे ऐसे क्रोध भाव आता है कभी कभी इसके मन में, कभी कभी इतना तीव्र क्रोध भाव आता है कृष्ण लेशिया जैसा, जैसा वो जड़ से उखाड़ देने की बात करता है ना, इसका बस नहीं चलता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। ये कृष्ण लेशिया का परिणाम, इतने तीव्र परिणाम नरकों में नारकी जीवों के अशुभ लेशिया ही होती है। कृष्ण नील का पुत्र, तीन तरह की लिष्टाएं होती है नारकी जीवों में, शुभ लिष्टाएं नहीं होती। संभालो अपने परिणामों को। और एक भाव है, ये सब षड भेदाह छह भेद लिष्टा के बतला दीजिए। अंतिम अंतिम भाव का नाम पारिणामिक भाव। क्या नाम? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? तीन कहां से लगाए आपने? दूसरे सूत्र से, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। त्रिभेद तीन कौन कौन से हैं? जीव भव्या भव्यत्वानी च, जीव भव्या भव्यत्वानी च, जीव माने जीवत्व, फिर भव्यत्व और अभव्यत्व, भव्या भव्य माने भव्य और अभव्य, तीन कहे हैं। सुनो इसके और लगा दिया, और क्या, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ज्ञायक भाव को कहा हमने पालना भी भाव। तीन संख्या मुख्य रूप से कही है, जीवत्व, बताओ मैं जीव हूं, जीवत्व पना है मुझ में, कौन से कर्म से है, कौन से कर्म से है, कर्म से, कौन से कर्म के उदय से है, किसी के भी उदय से नहीं, कौन से कर्म के उपशम से है, कौन से कर्म के क्षय से है, कौन से कर्म के क्षय उपशम से है, पूरे कर्म का उदय उपशम क्षय क्षय उपशम ये चारों जहां नहीं लागू होते वहां लागू होता है पारिणामिक। माने पारिणामिक भाव के लिए ये कर्म का उदय नहीं चाहिए, कर्म के उदय के बिना जो भाव होते हैं वो पारिणामिक होते हैं। क्या गलत बात नहीं है, वो कैसे होती है, जो पारिणामिक को देखते हैं उनके ये हो जाते हैं अपने आप। सुनो अब सुनो, ऐसा सुनो, दो तीन मिनट है ना, पार बता देता हूँ, शायद मैंने बताया था दो चार दिन में कही, अभी यही थी थी क्या चर्चा, पांच भावों की सुबह के प्रवचन में की थी क्या कभी? पारिणामिक भाव को न पहचानने वालों के लंबे समय तक अनंत काल तक औदयिक भाव चलते रहते हैं। पारिणामिक भाव को जिसने नहीं पहचाना ना उसके क्या होगा, औदयिक चलता रहेगा, कषायों में उलझा रहेगा, निश्चयों में उलझा रहेगा, गतियों में फंसा रहेगा। कौन? पारिणामिक भाव को नहीं पहचाना वो, अभी बताता हूँ आगे। पारिणामिक भाव को न पहचानने से औदयिक, पारिणामिक भाव को जिसने क्षण मात्र के लिए पहचाना धर्म की शुरुआत हो गई औपचमिक, पारिणामिक भाव का थोड़े समय के लिए अवलंबन लिया क्षयोपशमिक, और पारिणामिक भाव का परमानेंट अवलंबन ले लिया क्षय। समझ रहे हैं आप, ये पारिणामिक भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पारिणामिक भाव को पहचानो, और अपने आप को ही नहीं सामने वाले को भी यदि आप पारिणामिक भाव से देखेंगे तो आपको देख करके विरोध का भाव नहीं आएगा, आपके हृदय में कषाय का भाव जागृत नहीं होगा, आपको लड़ने का भाव नहीं आएगा। भाव नहीं बिगड़ेंगे आपके, भाव कब बिगड़ते हैं, जब पारिणामिक भाव से नहीं देखते हैं तो भाव बिगड़ते हैं, और जब पारिणामिक भाव से देखते हैं तो भाव बिगड़ते नहीं है, भाव संभलते हैं। तो एक तरह से जीवत्व भी किसी कर्म के उदय से नहीं होता, कोई जीव भव्य है। कल परसों पूछ रहे थे जब हमने ये प्रकरण यहाँ लिया था, भव्य भव्य वाला, अभव्य किसने बनाया इनको, अभव्य किसने बनाया, स्वभाव ही है, किसी कर्म के उदय से नहीं है, वो अनचेंजेबल भाव है। इसको अनचेंजेबल इस भाव को हम उस मूंग के एग्जाम्पल से बतलाते हैं, थोड़ा थर्डू क्या कहते हैं जो भी कहो आप हिंदी गुजराती में, वो मूंग, वो जो चीज से नहीं है, मंग मंग बनते होते हैं, कई कई ऐसे होते हैं आप खा रहे हैं, उनमें कोई कोई ऐसा होता है जो बहुत कठोर होता है, पत्थर जैसा होता है, वो सीजा नहीं। क्यों नहीं सीजा है? उसका स्वभाव ही ऐसा ही है। अच्छा, उन सबको इकट्ठा कर लो और उन सबको इकट्ठा करके अपन गैस पे प्रेशर कुकर में सीजने की कोशिश करें तो कितने सिलेंडर लगाएं कि वो अब तो सीज जाएंगे? कभी नहीं सीजेंगे। इसलिए अभव्य जीव कभी नहीं सीज सकते और भव्य जीव बोले वो कभी न कभी अवश्य सीजेंगे। इस तरह ये पारिणामिक भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव था। पांच भावों के नाम याद रखें, पांच भावों का स्वरूप याद रखें और पांच भावों के नाम और स्वरूप याद रख करके लक्ष्य सदा पारिणामिक भाव पर रखें। इस भावना से बात को विराम देते हैं।